प्रिय श्रोताओं नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी हमारे साथ आज का बाइबल अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से यशाया नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और इसका मुख्य विषय है मसीह का आगमन और छुटकारा। प्रिय श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। लीजिए, प्रस्तुत है ये बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। अपने उन सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उनका मैं विशेष स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा हम सब अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त करेंगे और अपने जीवन में शांति को प्राप्त करेंगे। तो इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, मैं आपको बता दूं कि हम इन दिनों यशाया की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि आज के इस वचन के द्वारा हम फिर से आपकी निकटता में आ सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, मनन चिंतन करते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि आज हम जो कुछ भी सुनते हैं समझ सकें, सीख सकें और अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त कर सकें। हर एक प्रकार की बुराइयों से, व्यर्थ की बातों से, दुनियावी चिंताओं से आप सबकी रक्षा करें। इस घड़ी हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए भी है जो अपने जीवन में निराश हैं, परेशान हैं या किसी प्रकार से बीमार हैं, व्यक्तिगत जीवन से या पारिवारिक जीवन से या नौकरी या पारिवारिक समस्याओं में उलझे हुए हैं। पिताजी, आप उन सब पर अपनी शांति प्रदान करें। इस समय फिर से हम सब अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम इन दिनों यशाया की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। हमने पिछले अध्ययन में देखा है कि इसराइल के भावी पुनरुद्वार और प्रभु के राज्य में आने वाली शांति की भविष्यवाणी देखी है और संसार के शासक का नरक में डाला जाना भी देखा है। अब हम शैतान और बुराई उत्पन्न होने के विषय में देखेंगे। तो आप मेरे साथ यशाया 14 अध्याय उसके 12 पद को निकाल लीजिए। यशाया 14 उसके 12 पद में लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है? तू तो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है? मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए, यह जो है शैतान के बारे में है। भोर के चमकने वाले सितारे अर्थात शैतान, यहेजकेल की पुस्तक 28 अध्याय के अनुसार शैतान को परमेश्वर ने सर्वोच्च प्राणी बनाया था। वह यहूदा इस्करियोती के समान परमेश्वर का विश्वासघाती हुआ। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 18 पद में प्रभु यीशु ने कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा हूँ। पहला योना के पत्री 3 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। और तब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12 अध्याय उसके 7 से 9 पद में लिखा है, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इबलिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। मेरे प्रियो, यह भोर के सितारे का आरंभिक चित्रण है। इस सर्वोच्च प्राणी का पाप क्या था? अंतिम विश्लेषण में पाप क्या है? मैं आध्यात्मिक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, दार्शनिक विचार नहीं। पाप क्या है? यशाया 14 अध्याय उसके 13 और 14 पद में हम पढ़ते हैं, तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागणों से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। मेरे मित्रों, यहां पर ये शैतान के 5 अहंकार हैं। वह अपनी इच्छा को परमेश्वर से बड़ी बना रहा था, अर्थात यह भ्रू व्यवस्था का पाप है, यह बुराई की उत्पत्ति है। मनुष्य का तो क्रमिक विकास नहीं हुआ, परंतु पाप का क्रमिक विकास अवश्य हुआ है। यह सृजित प्राणी द्वारा अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध स्थापित करने के द्वारा आरंभ हुआ है। नैतिकता की स्वतंत्रता के कारण सृजित प्राणी को अपनी इच्छा व्यक्त करने का अधिकार है, परंतु यह कहना मूर्खता है कि सृजित प्राणी के पास स्वतंत्र इच्छा है और वह जैसा चाहे वैसा ही कर सकता है। वह कुछ क्षेत्रों में सीमित है। भोर के सितारे की अपनी स्वतंत्र इच्छा थी। यह मनुष्य का आदि पाप था। यशाया की पुस्तक 53 अध्याय उसके 6 पद में वह कहता है, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हत्या करना पाप है, इसलिए नहीं कि परमेश्वर ने कहा, परंतु इसलिए कि वह परमेश्वर की इच्छा और उसके गुणों के विपरीत है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि कुछ लोग आराधना में उपस्थित होकर भी परमेश्वर को अप्रसन्न करते हैं। कल्पना कीजिए कि एक छोटा सा घमंडी मनुष्य परमेश्वर से कहता है, तू जो चाहता है वह मैं नहीं करूंगा, मैं तो अपनी ही इच्छा से जो चाहूं उसे करूंगा। आज मनुष्य यही तो कह रहा है। मेरे मित्रों, आप अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ही अंततः पूरी होगी। अतः परमेश्वर के सब भक्तों की प्रार्थना होना चाहिए, मती रचि सुसमाचार 6 अध्याय उसके 10 पद के अनुसार, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। जी हाँ, उसकी इच्छा के विपरीत जो कुछ भी किया जाए वह पाप है, चाहे वह कुछ भी क्यों ना हो। शैतान का पाप था उसका दुर्निवार घमंड। वह शराब नहीं पीता था, वह नशा नहीं करता था, उसने परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चलना चाहा। वह ज्योति का स्वर्गदूत रचा गया था, वह भोर का पुत्र था, वह एक सिद्ध प्राणी था, उसके पास नैतिक स्वतंत्रता थी, वह अपना चुनाव स्वयं कर सकता था, परंतु वह घमंड से ऐसा भर गया था कि उसने अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा से अधिक रखना चाहा। दूसरे शब्दों में, वह परमेश्वर से बड़ा बनना चाहता था। उसका उद्देश्य परमेश्वर से भिन्न होना नहीं है, परमेश्वर के बराबर होना था। वह स्वयं ही परमेश्वर होना चाहता था। उसने अपनी इच्छा परमेश्वर की इच्छा से ऊपर रखना चाहा। जो प्राणी ऐसी लालसा रखे वह स्वयं परमेश्वर के स्थान में होना चाहता है। मेरे मित्रों, आज शैतान के तुल्य अनेक मनुष्य हैं। वे अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा से अधिक महत्व देते हैं और परमेश्वर का स्थान ले लेते हैं। मानव जाति का यही पाप है। दो मार्ग हैं, परमेश्वर का मार्ग और मनुष्य का मार्ग। योहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 6 पद में प्रभु यीशु ने यही कहा था, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मेरे मित्रों, आप आज परमेश्वर के जगत में वास करते हैं, आप उसकी हवा सूंघते हैं और उसी के सूर्य प्रकाश का लाभ उठाते हैं, सांस लेते हैं, वह न तो आपके पास इसका बिल या भुगतान भेजता है और न ही आपके जीवन की देखरेख का खर्चा मांगता है। आप उसकी सृष्टि हैं, आप उसके ऋणी हैं, आपको उसकी आज्ञा मानना है। जिस प्रकार आप अपने बच्चे की देखभाल करते हैं, उसके लिए खर्च करते हैं, तो आप उससे उम्मीद करते हैं कि वह आपकी मर्जी को पूरा करे। अपनी स्वाभाविक शक्ति में मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा मानने की क्षमता नहीं रखता है। यही कारण है कि हमें परमेश्वर के पास पापी रूप में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आना है। इस प्रकार हमें नया स्वभाव प्राप्त होता है और यही नया स्वभाव नया जन्म है, हमारे जीवन को बदल देता है और परमेश्वर के भय में जीना सिखाता है। यशाया 14 अध्याय उसके 15 से 17 पद में लिखा है, परंतु तू अधोलोक में उस गढ़े की तह तक उतारा जाएगा, जो तुझे देखेंगे तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, क्या यह वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने न देता था और राज्य में घबराहट डाल देता था, जो जगत को जंगल बनाता और उसके नगरों को ढा देता था और अपने बंदियों को घर जाने नहीं देता था। परमेश्वर शैतान का न्याय करेगा और उसको कठोर दंड देगा। अंत में शैतान अग्नि कुंड में डाला जाएगा, वह उसके लिए पहले से तैयार किया गया है और जो उसके अनुयायी हैं वे भी उसमें डाले जाएंगे। परमेश्वर एक महान योजना और उद्देश्य तैयार कर रहा है जो पृथ्वी पर रहने वालों की कल्पना से भी परे है। आप और मैं इस विषय प्रश्न नहीं कर सकते, इसकी अपेक्षा हमें उस पर भरोसा रखना है, क्योंकि वह हम पर दया, अनुग्रह और प्रेम दर्शाने के लिए तैयार है। हम आगे देखते हैं बेबीलोन का भावी विद्रोह। यशाया के पुस्तक 14 अध्याय के 18 पद में लिखा है, जाति जाति के सब राजा अपने अपने घर पर महिमा के साथ आराम से पड़े हैं। बेबीलोन शैतान के अधीन था। आपको स्मरण होगा कि लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 5 से 7 पद में शैतान ने प्रभु यीशु को संसार का राज्य देने का प्रस्ताव रखा था। शैतान बेबीलोन वरन संसार के सब राज्यों के पीछे है। भविष्य में बेबीलोन परमेश्वर विरोधी सब राष्ट्रों का मनोरंजन स्थल होगा। यशाया 14 अध्याय उसके 22 और 23 पद में हम पढ़ते हैं, सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, मैं उनके विरुद्ध उठूंगा और बेबीलोन का नाम और निशान मिटा डालूंगा और बेटों पोतों को काट डालूंगा। यहोवा की यही वाणी है, मैं उसको साही की मांद और जल की झीलें बना दूंगा और मैं उसे सत्यानाश की झाड़ू से झाड़ डालूंगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। मेरे मित्रों, यदि आपने बेबीलोन के खंडहरों के चित्र देखे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह भविष्यवाणी कैसे एक एक शब्द पूरी हुई है। भविष्य में बेबीलोन का पुनः निर्माण होगा, विभिन्न स्थल पर वह विश्व के शासक का स्थान होगा और बाबुल का घमंडी गुम्मट होगा। परमेश्वर उसे फिर दंड देगा जो उसका अंतिम विनाश होगा। इस महान सत्यों का हम पर प्रकाशन इसलिए किया गया है ताकि हम भावी घटनाओं का पूर्व ज्ञान प्राप्त करें। यशाया 14 अध्याय उसके 24 और 25 पद में हम पढ़ते हैं, सेनाओं के यहोवा ने यह शपथ खाई है, निसंदेह जैसा मैंने ठान लिया है वैसा ही हो जाएगा और जैसी मैंने युक्ति की है वैसी ही पूरी होगी, कि मैं अश्शूर को अपने देश में तोड़ दूंगा और अपने पहाड़ों पर उसे कुचल डालूंगा, तब उसका जुआ उनकी गर्दनों पर से और उसका बोझ उनके कंधों पर से उतर जाएगा। अश्शूर उत्तर से आने वाले शासक का प्रतीक है। पद 19 से 27 में बेबीलोन और उसके द्वारा दर्शाए गए प्रत्येक क्षेत्र पर परमेश्वर की भावी दंड का वर्णन करते हैं। वह आंशिक रूप से पूरी हो गई है, वरन एक एक शब्द पूरी हुई है। हम देखेंगे कि फलिस्तीन का भी उग्र प्रत्याग है। यहाँ फलिस्तीन का दंड भी घोषित किया गया है, जिसके प्रकट होने का कारण राजा आहाज की मृत्यु है। आहाज ने 16 वर्ष यहूदा में राज्य किया था और वह एक बुरा राजा था। वे उससे मुक्ति पाकर प्रसन्न थे, परंतु उन्हें भय था कि उसके स्थान पर बैठने वाला उसका उत्तराधिकारी भी दुष्ट न हो। एक अच्छे राजा के आने की संभावना बहुत कम थी, परंतु सौभाग्य से उन्हें एक अच्छा राजा मिल गया। यशाया 14 अध्याय उसके 29 पद में हम पढ़ते हैं, हे सारे पलिस्तीन, तू इसलिए आनंद न कर कि तुझे मारने वाली लाठी टूट गई, क्योंकि सर्प की जड़ से एक काला नाग उत्पन्न होगा और उसका फल एक उड़ने वाला और तेज विष वाला अग्नि सर्प होगा। आहाज के बाद दो और राजा हुए जो अच्छे राजा थे, परंतु सबसे बुरे राजा तो अभी आने वाले थे। मनुष्यों को यह समझना है कि संसार में सुधार लाने वाला मनुष्य नहीं हो सकता है। हम सोचते हैं कि हम नेताओं को बदल दें तो शायद सुधार आ जाएगा, परंतु हमने यह करके भी देखा है कि यह सुधार लाने का मार्ग नहीं है। परमेश्वर पलिस्तीन से कह रहा है कि आहाज की मृत्यु पर वे आनंद न मनाएं, क्योंकि परिस्थिति में सुधार नहीं आएगा। मेरे मित्रों, प्रभु के राज्य से पूर्व आशीषें तो उन्हें मिलेंगी, परंतु उन्हें कठोर दंड दिया जाएगा जो पड़ोसी राज्यों की तुलना में कहीं अधिक होगा, क्योंकि इस देश को ज्योति प्रदान की गई थी और ज्योति उत्तरदायित्व उत्पन्न करती है। यशाया भविष्य की ओर निहार रहा है, जिस समय महाक्लेश से या महाक्लेश में ख्रिस्त विरोधी का राज्य होगा। कुछ लोगों का मानना है कि यह वास्तव में दंड कहा तो गया है, परंतु वैसा दंड नहीं है। पलिस्तीन नाम बड़ा रोचक नाम है जो पलिस्तियों से उस स्थान को प्राप्त हुआ है। वे मिस्र से निकलकर समुद्री तट के किनारे आकर बस गए थे। इसराइल के प्रवेश के समय तो वे वहां थे, परंतु अब्राहम के युग में वे वहां नहीं थे। 400 वर्ष बाद जब इसराइल वहां लौटा तब वे वहां थे। सपन्याह और जकरिया की पुस्तकों में अशदोद और अश्कलोन के विरुद्ध विशेष भविष्यवाणियां हैं। ये दोनों नगर पलिस्तीन नगर थे, उन्हें नष्ट होना था और वे नष्ट हुए। पद 30 से 32 में उनके दंड का सविस्तार वर्णन है और दंड अति कठोर है। मेरे मित्र, यहां पर अध्याय 14 समाप्त होता है और अब हम आगे बढ़ते हुए अध्याय 15 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। इसमें हम देखते हैं मोआब को दंड। इस संक्षिप्त अध्याय में मोआब को दंड देने की भविष्यवाणी है। यह एक विचित्र बात है कि बेबीलोन के संबंध में केवल दो ही अध्याय हैं। बेबीलोन प्रथम महान विश्व शक्ति था। बेबीलोन की तुलना में मोआब एक नगण्य देश था, परंतु यशाया के युग में और यहां तक कि दाऊद के युग में भी मोआब एक महत्वपूर्ण देश हो गया था। वह एक बड़ा राज्य था। मोआब लूत की बड़ी पुत्री की अवैध संतान था, उसी के नाम से यह देश पड़ा। उसी के वंशजों को मोआबी कहते थे। वे इसराइल के सदाकालीन वैरी थे। उनके राजा बालाक ने विलाम को बड़ी भेंट देकर इसराइल को श्राप देने के लिए बुलाया था। वह उनके आगमन से डर गया था। मेरे मित्रों, रूत की पुस्तक में मुख्य नायक रूत एक मोआबी स्त्री थी। रूत का चरित्र अति मनभावन है। दाऊद भी तो इस कारण आधा मोआबी था, क्योंकि रूत दाऊद की दादी थी। जब दाऊद शाऊल से डरकर भागा था तब उसने अपने माता पिता को मोआब में रखा था, वहां उसके संबंधी थे। आज मोआब राष्ट्र विलोप हो गया है। आज के मोआबी कौन है? मेरे विचार में वे जो परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध का दावा तो करते हैं, परंतु दिल की गहराई से उससे दूर हैं। उन्हें हम मोआबी कह सकते हैं। देखिए इब्रानियों के पत्री 12 अध्याय के 8 पद में, फेलिक्स और फेस्तुस के समान मोआबी भी राज्य के निकट पहुंच गए थे, परंतु प्रवेश न कर पाए। वे परमेश्वर की प्रजा के पड़ोसी थे, परंतु परमेश्वर के अनुयायी कभी नहीं बने। आज के मोआबियों को पहचानना कठिन नहीं है। वे आज हमारी कलीसिया में भी हैं। वे विश्वासियों की न्याय व्यवहार दिखाते हैं, उनका वर्णन पौलुस दूसरा तीमोथियुस के पत्र 3:5 में करता है। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। यहूदा 16 में उनका चरित्र दर्शाया गया है, असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले। मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं, लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं। आज के मुआबी अभक्त हैं, वे भक्ति का रूप धारण करते हैं परंतु होते नहीं। आपसे कुछ मिलने की आशा हो तो वे मीठी मीठी बातें करते हैं, परंतु जब उनकी आशा टूट जाए तो आपको दूध से मक्खी के समान निकाल कर फेंक देते हैं। मुआब एक खतरनाक मित्र था, वह इसराइल का विश्वास योग्य पड़ोसी नहीं था। तो आइए हम देखें मुआब का आकस्मिक विनाश। यशाया की पुस्तक 15 उसके 1 में लिखा है, मुआब के विषय भारी भविष्यवाणी, निश्चय मुआब का आर नगर एक ही रात में उजाड़ और नष्ट हो गया। निश्चय मुआब का कीर नगर एक ही रात में उजाड़ और नष्ट हो गया है। एक ही रात में मुआब का विनाश अकस्मात ही आया। यह अभिव्यक्ति 2 आई है जो इस तथ्य को प्रकट करती है कि मुआब का विनाश कैसा आकस्मिक था। उनका विनाश रात के समय आया था और उनके विलाप की रात का कभी अंत नहीं हुआ था। अश्शूरों ने जो उस देश का विनाश किया वह अवर्णित था, उस पर विश्वास करना कठिन था। ऐसा प्रतीत होता था कि वे इस धरती पर से मुआब का नामो निशान मिटा देंगे। कीर नगर मृत सागर के दक्षिण पूर्व में लगभग 15 की दूर पर एक पर्वत की चोटी पर बसा हुआ था जिसे नाश किया गया। यशाया 15:2 में लिखा हुआ है, बैत और दीबोन ऊंचे स्थानों पर रोने के लिए चढ़ गए हैं, नबो और मेदबा के लिए मुआब हाय हाय करता है, उन सबों के सिर मुड़े हुए और सबों की दाढ़ियां मुड़ी हुई है। मेरे मित्रों, इस पद में जिन स्थानों का उल्लेख किया गया है संभवतः हम उनसे परिचित नहीं है। बैत का अर्थ है घर जो मोश का मंदिर था। दीबोन यर्दन नदी के पूर्वी तट पर बसा एक नगर था जहां मुआब का पत्थर पाया गया है। नीबो वह पर्वत है जहां से मूसा ने प्रतिज्ञा के देश को देखा था। मेदबा रूबेन का नगर था, इसे हम यहोशू 13:16 में पाते हैं। यशाया के युग में यह संपूर्ण क्षेत्र और नगर मुआब के अधीन था। वे नष्ट होंगे क्योंकि वे परमेश्वर को जानते हुए भी अन्य जाति देवताओं के मंदिरों में उपासना करते थे और कहते थे कि वे जीवित और सच्चे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। यशाया 15:3 में लिखा है, सड़कों में लोग टाट पहने हैं, छतों पर और चौकों में सब कोई आंसू बहाते हुए हाय हाय करते हैं। मेरे मित्रों, मैं आपको बता दूं कि जॉर्डन के आमान नगर में आपको एक विचित्र अनुभूति होगी। वह एक दरिद्र नगर है परंतु यशाया के युग में वह समृद्ध नगर था। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वे आज भी परमेश्वर के दंड के अधीन है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आराधना नहीं की। मेरे मित्रों, हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर जो उसके खिलाफ जाता है उसको दंड देता है, चाहे आप हो या मैं हूं, क्योंकि वह चाहता है कि हम उसके भय में, उसके निकटता में और उसकी सत्यता में अपने जीवन को व्यतीत करें। आज हम में से कई लोग भी मुआबी के समान हैं। हम परमेश्वर का नाम तो लेते हैं लेकिन अपना जीवन परमेश्वर से अलग रखते हैं। आज हमारे लिए मौका है कि हम प्रभु की ओर फिरें और अपने जीवन को सुधार लें ताकि हम उस विनाश से बच जाएं। मेरे प्रियो, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार। Oh, yeah.